أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام عليك يا فاطمة البتول، السلام عليك يا زين نساء العالمين، السلام عليك يا بنت رسول الله رب العالمين، صلى الله عليك وعليه السلام، عليك يا أم الحسن والحسين. لعن الله أمة غصبتك حقك ومنعتك ما جعله الله لك حلالا، أنا بريء إليك منهم ومن شيعتهم. صلوات. آج حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وہ فضائل اور مناقب بیان کریں گے جو آیات قرآنی کی روشنی میں ملتے ہیں، اور اس کے بعد پھر روایات کی روشنی میں ملنے والے فضائل کو بیان کریں گے. آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب ہے زندگانی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور آیت اللہ عبد الحسین امینی کی کتاب ہے فضائل فاطمۃ الزہرا. انہوں نے شیعہ اور سنی علماء سے روایات کو نقل کیا ہے، اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی ایسے ہی فضائل اور مناقب کی حامل ہیں جو رسول اللہ اور امیر المومنین اور حضرات حسنین اور جناب فاطمہ کی معصوم اولاد کے بارے میں بیان ہوئے ہیں. بزرگ علماء شیعہ اور سنی نے جناب فاطمہ کے فضائل میں بہت سی تفصیلی کتب لکھی ہیں. بعض فضائل کا تعلق قرآنی آیات سے ہے. ان میں ایک آیت ہے آیہ مباہلہ، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. جس وقت نبی نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بھی اس موقع پر شرکت فرمائی. آپ ایسی معصوم ہستی ہیں جو دوسری چار معصوم ہستیوں کے ساتھ مباہلے میں شامل تھیں. مباہلہ کوئی معمولی بات نہیں تھا، بلکہ اس عظیم کام کے لیے کچھ خاص ہستیوں کی ضرورت تھی جو حق کے ساتھ اپنے ارتباط کی بنا پر اس کی صلاحیت رکھتی ہوں. حضرت فاطمہ ان افراد میں سے ایک ہیں جو اس آیت کی مصداق ہیں، اور یہ مسلمات میں سے ہے. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس تمام صحابہ پر اہل بیت کی فضیلت کے لیے آیہ مباہلہ بہت بڑی دلیل ہے، اور اسی فضیلت کی بنا پر شیعہ آل رسول کو تمام گزشتہ نبیوں سے بھی افضل کہنے کا حق رکھتے ہیں. دوسری آیت آیہ تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بہت سی شیعہ سنی روایتیں متواترہ گواہ ہیں کہ اہل بیت سے مراد اصحاب قصہ یعنی پنجتن پاک ہیں. تقریباً 70 حدیث شیعہ اور سنی علماء نے نقل کی ہیں جو اس مطلب پر شاہد ہیں، جن میں زیادہ کتب اہل سنت کی ہیں. صحابہ کرام میں سے 300 افراد نے اس آیت کا نزول جناب ام سلمہ کے گھر کا بتاتے ہوئے نقل کیا ہے، اور ان 300 افراد کا مکمل تعارف جو کہ مختلف صدیوں میں گزر چکے ہیں کتاب الغدیر میں موجود ہے. آیت اللہ عبد الحسین امینی کی کتاب الغدیر میں موجود ہے. ان 300 افراد نے جو روایات نبی سے نقل کی، اس میں تحریر ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی سے پوچھا گیا کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، تو نبی نے فرمایا میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے. شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ آیہ تطہیر میں شامل ہیں. رسول اللہ نے اس حقیقت کو مزید واضح اور روشن کرنے کے لیے نہایت خوبصورت انداز اختیار کیا، جسے صحابہ میں سے 9 افراد نے نقل کیا ہے کہ آیہ تطہیر نازل ہونے کے بعد سے تقریباً وفات کے قریب تک رسول اللہ ہر روز صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے وقت مسجد پہنچنے سے پہلے شہزادی کے گھر کے دروازے پر آ کر یوں فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ انس کی روایت کے مطابق یہ عمل 6 ماہ مسلسل جاری رہا، احمد ابن حنبل اور ابن عباس کی روایت کے مطابق 7 ماہ، اور اس کے علاوہ 8 اور 9 ماہ کی روایت بھی ہے۔ اور ایک راوی کا کہنا ہے کہ 1 سال میں مدینہ رہا اور ہر روز یہ روش دیکھی کہ نبی اپنی زندگی کے آخری ایام تک ایسا ہی کرتے رہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر کسی نے اہل بیت کے تعین کی بات نہیں سنی تو وہ آج سن لے، اور جس نے آج نہیں سنی تو وہ کل سن لے۔ تمام صحابہ جو مدینہ میں تھے اور وہ تمام مسافر جو باہر سے آتے تھے نبی کی اس روش سے آگاہ ہو چکے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ آیہ تطہیر صرف پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تیسری آیت سورہ دہر کی آیت نمبر 9 ہے، وَيُطْمِعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اس کی محبت میں محتاج، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس آیت میں بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت و تعریف بیان کی گئی ہے۔ تمام مسلمانوں اور دونوں فریقین شیعہ اور سنی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت فاطمہ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں سورہ دہر نازل ہوئی ہے۔ کسی بھی شخص نے کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، نہ تو اس بارے میں کہ یہ سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا، اور نہ اس بارے میں کہ حضرت فاطمہ اہل بیت کی ایک فرد ہیں۔ ایک حدیث ابن عباس نے نقل کی ہے جس کی تائید علماء اور محدثین، چاہے شیعہ ہوں یا اہل سنت، سب نے کی ہے، اور 30 علماء اہل سنت کے نام موجود ہیں جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے، جن میں ابو جعفر، حکیم ترمذی، محمد ابن جلیل طبری، سبتے ابن جوزی، جلال الدین سیوطی، قاضی ناصر الدین بیضاوی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ واقعہ آپ سنتی رہتی ہیں، صرف چند جملے خلاصہ روایت کا کہ حضرات حسنین کی صحت یابی کے لیے حضرت علی اور فاطمہ اور جناب فضہ نے روزہ رکھنے کی منت مانی، اور جب حضرات حسنین صحت یاب ہو گئے سب نے روزے رکھے۔ 3 دن تک یہی ہوتا رہا کہ افطار کے وقت سائل سوال کرتا اور غذا اسے دے دی جاتی، خود بھوکے رہتے اور پانی سے افطار کرتے۔ 4th دن مولا حضرات حسنین کا ہاتھ پکڑے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ نبی نے دیکھا کہ دونوں بچے بھوک سے کپ کپا رہے ہیں۔ نبی کو یہ حالت دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ پھر آپ ان کے ساتھ خانہ اقدس پر تشریف لائے اور جناب فاطمہ کو محراب عبادت میں پایا۔ شہزادی محراب عبادت میں تھیں، بھوک کی شدت سے شکم مبارک کمر سے جا لگا تھا اور آنکھوں میں حلقے پڑ گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی غمگین ہوئے۔ اسی وقت جناب جبریل نازل ہوئے اور مبارکباد دی اہل بیت کے بارے میں اور سورہ حل عطا پڑھ کر سنائی۔ یہ تو شان نزول کا بیان ہے، اور اس وقت صرف وہ ایک آیت جس کی تفسیر میں حضرت فاطمہ کا تذکرہ ہے اس کو صرف بیان کریں گے، سورہ دہر کی آیت نمبر 13، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ کہا گیا کہ بہشت میں آفتاب اور مہتاب کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ محمد و آل محمد کے نور کی اتنی نورانیت ہوگی جو سورج کی روشنی سے 100 گنا زیادہ ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں روایت میں یہ کہا گیا کہ جنتی لوگ اچانک ایک روشنی دیکھیں گے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے، خدایا تو نے قرآن میں کہا تھا جنت میں سورج نہیں، پھر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جناب جبرائیل یہ کہیں گے، یہ سورج کی روشنی نہیں بلکہ علی اور فاطمہ کسی بات پر مسکرائے ہیں۔ علی اور فاطمہ نے کسی بات پر مسرت پر تبسم فرمایا ہے جس سے یہ روشنی ظاہر ہوئی ہے۔ 4th آیہ سورہ شورا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، کہہ دیجئے میں رسالت کی انجام دہی پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت رکھو۔ خدا کے حکم سے نبی کے اقربا کی مودت اجر رسالت قرار پائی۔ تمام مسلمان شیعہ سنی کا اجماع ہے کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ अहमद इब्ने हम्बल, हाफिज़ इब्ने मंज़र, हाफिज़ इब्ने अबी हातिम और इनके अलावा 7 नाम मज़ीद हैं जिनसे ये रिवायत इब्ने अब्बास नकल करते हैं कि उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई तो नबी से पूछा गया कि आपके वो अकरबा कौन हैं जिनकी मवद्दत फ़र्ज़ की गई है। नबी ने फरमाया, अली, फ़ातिमा और उनके 2 बेटे। इस मौजू पर हाफिज़ अबू अब्दुल्ला ने एक रिवायत नकल की है, कहते हैं कि नबी ने फरमाया, खुदा ने मेरे अहले बैत की मोहब्बत को मेरी रिसालत का अजर करार दिया है, मैं कल इस बारे में पूछूंगा। यानी कयामत के दिन तमाम लोगों से जिस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा वो 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलायत है, जिनमें से एक हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलायत भी है। इमाम शाफ़ई ने अशार में कहा कि ए अहले बैते रसूल, खुदा ने अपनी नाजिल करदा किताब कुरान में आपकी मोहब्बत को वाजिब किया है। आपकी अज़मत और शान और बुजुर्गी के लिए यही काफ़ी है कि जो शख्स नमाज के तशहुद में नबी के साथ आप पर सलवात ना भेजे उसकी नमाज बातिल है। और मुहियुद्दीन अरबी ने अशार में कहा, मेरे लिए मकाम फ़ख्र है कि मैं अहले बैत रसूल की मोहब्बत वाजिब समझता हूँ, ताकि खुदा मुझे उनके कुर्ब से नवाजे और मुझे उन लोगों में से करार ना दे जिनको अल्लाह ने उनसे दूर रखा है। बस मोमिन आते गिरामी, जो भी शरई उमूर वाजिब हैं वो फ़कत इसलिए हैं कि उन पर अमल करने वाले को फ़ायदा पहुँचता है, वरना खुदा और रसूल को इनकी इनका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी अगर हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं इसमें हमारा ही फ़ायदा है। इसी उसूल के मुताबिक परवरदिगार आलम और पैगंबर इस्लाम ने मोहब्बत अहले बैत की बात की है ताकि मखलूक को फ़ायदा पहुँचे। इसका मकसद ये नहीं कि मुसलमान अहले बैत को कोई मादी फ़ायदा पहुँचाएं, क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह खुम्स का अदा करना है, यानी खुदा ने मुसलमानों को खुम्स का हुक्म दिया, ये हक़ सादात है, अदा किया जाए। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान ज़ुर्रियत रसूल को मादी फ़ायदा पहुँचाएँ, बल्कि इसकी वजह ये बयान की गई कि एक तो तुम्हारे नफूस पाक हो जाएं, दूसरा तुम्हारा माल पाक हो जाएगा और इसका इस्तेमाल तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा, तीसरा ये कि इस नेक काम के ज़रिए तुमको रसूल अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो जाएगा और क़ुर्ब रसूल तुम्हारे लिए ऐन क़ुर्ब खुदा का वसीला साबित होगा और फिर यही वसीला तुम्हारे लिए शफ़ात रसूल का सबब बन जाएगा। गर्ज़ ये कि अहले बैत की दोस्ती वाजिब और उनके हुकूक़ अदा करना दुनिया में मकसद हयात और आखरत में बाईस निजात है। हमारे सामने दुनियावी और उखरवी खतरात बहुत ज़्यादा हैं। कितनी जगहें ऐसी हैं जहाँ कोई काम नहीं आता, ना अज़ीज़, ना माल, ना मकाम। तो इन मसाइब और खतरात से बचने के लिए क्या खुदा ने कोई वसीला करार दिया या नहीं करार दिया? तो बेशक खुदा ने एक मज़बूत वसीला, महफूज किला और मज़बूत रस्सी हमारे सामने पेश की है, और वो पाको पाकीज़ा अहले बैत रसूल की विलायत और मोहब्बत है, जो हर मुश्किल के सामने एक मज़बूत दीवार है कि जब भी कोई मुश्किल सामने हो तो इस पाक घराने के मुक़द्दस अफराद के दामन को थाम लिया जाए। खुदा उनकी बरकत से मदद करेगा, हर काम दुरुस्त हो जाएगा। एक शख्स रसूल की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मुझे इस्लाम बताएं। नबी ने बता दिया। उसके बाद अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मुझे आपने तौहीद और रिसालत पहुँचा दी और मेरी हिदायत की, क्या इसकी कोई उजरत भी है? नबी ने फरमाया, सिर्फ अकरबा की मोहब्बत, अकरबा की मवद्दत मेरी रिसालत की उजरत है। उसने कहा कि मैं अपने अकरबा से मोहब्बत रखूँ या आपके अकरबा से? तो नबी ने फरमाया, मेरे अकरबा से। उसने ये सुनकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अपना हाथ आगे करें ताकि मैं आप और आपके अकरबा की मोहब्बत के बारे में बयत करूं। खुदा उस शख्स पर लानत करे जो आप और आपके अकरबा से मोहब्बत ना रखे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, आमीन। इससे मालूम होता है कि जो हज़रत जहरा की विलायत और मवद्दत नहीं रखता, नफरीन का मूजिब बना। नबी ने इसकी तस्दीक फरमाई है। पांचवी आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 37। फ़तलक़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैह। हज़रत आदम ने खुदावंदे आलम से कलमात सीखे, उनके वसीले से तौबा की। आयतुल्ला अब्दुल हुसैन अमीनी लिखते हैं, किस आयाए करीमा के बारे में चंद अहादीस रिवायत हुई हैं जो बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। इनकी रोशनी में कोई भी शख्स बआसानी ये जान सकता है कि हज़रत सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की तख्लीक के असबाब में से एक हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे रसूल अल्लाह, हज़रत अली और हज़रत हसनैन सब सबबे तख्लीक़ कायनात हैं। और यह नामुमकिन है कि कोई वजह तख्लीक कायनात करार पाए मगर हामिल विलायत ना हो। इस बारे में दो रिवायात हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनकूल है, उसे अहले सुन्नत मुहद्दिसीन ने भी जिक्र किया है। रिवायत यह है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने रसूल से कुरान की आयत, जिसकी भी हमने तिलावत की है, इसके बारे में पूछा तो नबी ने फरमाया, इस रिवायत में नबी ने वो उस वाक़े की तरफ इशारा किया है कि वो वाक़या बयान हो रहा है कि जब हज़रत आदम और हव्वा को ज़मीन पर भेजा गया था तो खुदा की तरफ से जिब्रील ने पैगाम पहुंचाया, इरशाद हुआ, ऐ आदम क्या मैंने तुम्हें अपनी कुदरत से पैदा नहीं किया, क्या मैंने तुम में अपनी रूह नहीं फूंकी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, क्यों नहीं। तो इरशाद हुआ, फिर ये रोना कैसा है। हज़रत आदम ने अर्ज़ की, जिस शख्स को अपने रहमान और रहीम परवरदिगार के जवार रहमत से निकाला गया हो उसका रोना कैसे बंद हो सकता है। हुक्म हुआ, तुम इन कलमात को याद रखो और इनके ज़रिए तौबा करो तो अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। ऐ आदम तुम यूं कहो, ऐ माबूद मैं तुझसे हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से सवाल करता हूँ, तू पाक है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने बुराई की और अपनी जान पर जुल्म किया, तू मेरी मगफिरत फरमा, बेशक तू गफूर रहीम है। बस वो कलमात यही थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए थे। मालूम होता है कि खुदा ने इन कलमात के ज़रिए हज़रत आदम को तसल्ली दी कि अगरचे तुम मेरे जवारे रहमत से दूर हो गए हो मगर ये गिरा कदर कलमात तुम्हारे लिए उसका नेमुल बदल और जवारे रहमान की हम नशीनी का हम पल्ला हैं और फिरदौस से जिना के बराबर हैं और जिस नेमत से तुम महरूम हो उसकी तिलाफी का बाइस हैं। दूसरी रिवायत, हाफिज़ इब्ने नजार जो अहले सुन्नत के अजीम उलमा में से हैं, अपनी सनद के साथ इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह से इन कलमात के बारे में पूछा जो हज़रत आदम को सिखाए गए थे और जिनकी वजह से, जिनकी बिना पर परवरदिगार ने उनकी तौबा कबूल की थी। नबी ने फरमाया, आदम ने मोहम्मद अली फातिमा हसन और हुसैन के वसीले से वसीले से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, परवरदिगार ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। इस रिवायत को अल्लामा सुयूती ने, हाफिज़ दारकतनी ने, इब्ने मगाज़ी ने असनाद के साथ नकल किया है और इस रिवायत से पता चलता है कि हज़रत फ़ातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा आलम की तख्लीक का ज़रिया और वलियतुल्लाह हैं, वही की ज़बान में जो अफराद कलमात इलाही करार पाएँ। अम्बिया और औलिया जिनके वसीले से दुआ मांगे उनके लिए यह नामुमकिन है कि वो ओहदाए विलायत से खाली हों। हम देखते हैं कि हज़रत फातिमा भी इन कलमात का जुज़ हैं जिनकी मार्फत तमाम अम्बिया को करा दी गई थी। ये बात खिलाफ़े अक्ल है कि कोई फ़र्द कलिमतुल्लाह तो हो और अम्बिया और औसिया तक उसके वसीले से दुआ मांगे मगर वो खुद मकाम विलायत का हामिल ना हो। हज़रत जहरा की मखसूस ज़ियारत में भी आपकी विलायत का एतराफ़ और दोस्ती के बारे में ये कहा गया है। इतवार का दिन हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाए कायनात से मंसूब है, ये उनका दिन है। इस दिन इन दोनों मासूमों की ज़ियारत पढ़ी जाती है, ज़ियारत बयान हुई है। तो इस ज़ियारत में जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत में ये कहा जा रहा है कि मैं इस ज़ियारत में इस तरह से कहा जा रहा है कि गवाह रहिएगा, बीवी को गवाह बना के कहा जा रहा है कि गवाह रहिएगा, मैं आपकी और आपके ख़ानदान की विलायत की तायीद करती हूँ या तायीद करता हूँ। यानी जनाब फातिमा तुज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वलियतुल्लाह हैं, आपकी मोहब्बत दोस्ती ताबेदारी वाजिब है, हकीकी नेमत विलायत अहले बैत है, इमाम रिज़ा अलैह सलाम की इमाम की हदीस के चंद जुमले फरमाया, वो हकीकी नेमत जिसका बरोज़े महशर तौहीद और नबूवत के बाद सवाल होगा वो हम अहले बैत की मोहब्बत और ताबेदारी है। आयतुल्ला दस्ते गैब शिराजी ने कहा, विलायत के मानी अगर वाव की ज़बर से हो जैसे वलायत तो इसके मायनी मोहब्बत और दोस्ती का होगा। और अगर ज़ेर के साथ हो जैसे विलायत, तो फिर ताबेदारी पैरवी के मायने होंगे। लिहाजा अहले बैत की मोहब्बत में ये जज्बा मौजूद है कि वो मोहब्बत करने वाले शख्स को ज़मीन से आसमान की बुलंदी तक ले जा सकता है, और उनकी ताबेदारी के नूर में ये ताकत मौजूद है कि वो मोहब्बत करने वाले के अमल में हर किस्म की कमी को ज्यादती में तब्दील कर सकता है, पस्ती को बुलंदी में तब्दील कर सकता है, अगरचे कि उसके दिल में अंधेरा ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी रोशनी कर देगा ये जज्बाए मोहब्बत। ये तो था आयात का बयान। अब रिवायात को बयान करेंगे हज़रत फ़ातमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल रिवायात की रोशनी में। पहला मौजू, हज़रत फ़ातमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कायनात की इल्लतों में से एक हैं। इस मौजू के तहत फरीक़ैन यानी शिया सुन्नी के यहाँ बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं जिनकी बिना पर यह साबित होता है कि हज़रत फ़ातमा दुनिया की खिलकत के असबाब में से एक हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके पिदर और हज़रत अली और हज़रत हसनैन तख्लीक़े आलम की इल्लत हैं। एक हदीस जिसके रावी अबू हुरैरा हैं, रिवायत यह है कि हुजूर ने फरमाया, जिस वक्त खुदा ने हज़रत आदम को पैदा किया और उनमें अपनी रूह फूंकी, तो आदम अर्श की तरफ मुतवज्जा हुए। वहाँ देखा कि पांच अशकाल रुकू और सुजूद की सूरत में हैं। तो परवरदिगार से पूछा, परवरदिगार तूने मुझसे पहले भी किसी को मिट्टी से बनाया है? खुदा ने फरमाया, नहीं। तो हज़रत आदम ने पूछा, फिर वो पांच कौन हैं जो मेरी शक्ल और हयत में हैं? इरशाद हुआ कि वो तुम्हारी औलाद में से हैं, अगर वो ना होते तो मैं तुम्हें भी खलक ना करता। ये वो पांच हैं जिन्हें मैंने अपने पांच नामों से मुश्तक किया है, अगर ये ना होते तो मैं जन्नत और दोजख, अर्श कुर्सी ज़मीन और आसमान, फरिश्ते इंसान और जिन्नात किसी को भी पैदा नहीं करता। मैं महमूद हूँ, ये मोहम्मद है। मैं आली हूँ, ये अली है। मैं फातिर हूँ, ये फातिमा है। मैं एहसान हूँ, ये हसन है। मैं मोहसिन हूँ, ये हुसैन है। मुझे अपनी इज्जत और जलालत की कसम है, जो कोई भी इनके बारे में ज़र्रा बराबर भी बुग्ज़ रखता है, मैं उसे जहन्नुम में झोंक दूंगा और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होगी। ऐ आदम, ये मेरे बरगजीदा बंदे हैं और हर किसी की निजात इनकी दुश्मनी और दोस्ती से मरबूत है। ऐ आदम, जब भी तुम्हें मुझसे कोई हाजत दरपेश हो तो इनके वसीले से दुआ करना। अबू हुरैरा कहते हैं कि इसके बाद नबी ने फरमाया, हम निजात की कश्ती हैं, जो हमसे वाबस्ता हो जाएगा उसने निजात पाई, और जो हमसे रूगर्दां होकर हिदायत चाहेगा वो हलाकत में पड़ेगा। बस जिस किसी को खुदा के यहाँ कोई हाजत हो तो वह हम अहले बैत के वसीले से दुआ मांगे। इस रिवायत को शेख हमवी, हाफिज़ ख्वारज़मी और चंद दूसरे उलमाए अहले सुन्नत ने नकल किया है। इसी तरह उलमाए शिया ने भी इस हदीस को नकल किया है। बेशक अहले बैत तमाम लोगों के लिए पेश आने वाली तकालीफ और ज़रूरतों के मौके पर पुश्त पना हैं। अम्बिया ने अपनी मुश्किलात में इनके तवस्सुल से दुआ की, और खुदा के यहाँ अहले बैत की मंजिलत की वजह से उनकी दुआएं कबूल की गईं। ये मोअज़्ज़ज़ मोअज़्ज़म और खुदा के बरगजीदा हैं। हज़रते पंजतन इन फ़ज़ाइल में एक दूसरे के साथ हैं, और हज़रते ज़हरा भी इस मंजिल में अपने पिदर बुजुर्गवार के साथ शामिल हैं। दूसरा मौजू, हज़रते पंजतन के मुश्तरका फ़ज़ाइल में से दूसरी फजीलत ये है कि इन हज़रात के नाम साक़े अर्श पर लिखे हुए हैं। इन मुक़द्दस हस्तियों का तारुफ़ फ़रिश्तों से कराया गया। इब्ने अब्बास रसूल अल्लाह से रिवायत नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फ़रमाया, मेराज की शब मैंने इन कलमात को जन्नत के दरवाज़े पे लिखा हुआ देखा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अली अल्लाह के महबूब हैं, फ़ातिमा, हसन और हुसैन खुदा के बरगजीदा हैं, इनके दुश्मनों पर खुदा की लानत है। इस रिवायत को उलमाए शिया और उलमाए अहले सुन्नत के एक गिरोह ने, जैसे ख़तीब बगदादी, इब्ने असाकर, हाफिज़ गंजी ने और दीगर उलमा ने नकल किया है, हज़रत फ़ातमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए खैरतुल्लाह का लफ्ज़ आया है, और ये खैरतुल्लाह का लफ्ज़ एक और हदीस में भी आया है, जिसे हाफिज़ आसमी ने अपनी किताब में लिखा है कि रसूल अल्लाह ने हज़रत अली से फरमाया, खुदा ने दुनिया में अपनी मखलूक़ात पर एक मरतबा नज़र डाली और दो जहानों के मर्दों में से मुझे मुंतखब किया, दूसरी दफ़ा नज़र डाली और दो जहानों के मर्दों में से आपको चुन लिया, तीसरी मरतबा नज़र डाली और आपकी औलाद में से नौ इमामों को चुन लिया, और चौथी दफ़ा नज़र डाली और दो जहानों की ख़वातीन में से फ़ातमतुज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को चुन लिया। रिवायत का जुमला है, फ़ख्तारा फ़ातिमा अला निसाइल आलमीन, और मुतअद्दिद बार हज़रत सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से इन अहादीस के बारे में पूछा गया कि इस जुमले में निसाइल आलमीन से क्या मुराद है। फरमाया, यानी हज़रत सैयदा, निसाइल आलमीन से मुराद जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हैं, अव्वलीन और आखरीन की ख़वातीन की सरदार हैं। रावी कहता है कि पूछा गया, क्या हज़रत सैयदा अपने ज़माने की ख़वातीन की सरदार हैं? फरमाया, नहीं, अपने ज़माने की सरदार तो हज़रत मरियम थी। हज़रत जहरा तो तमाम दुनिया की अव्वलीन और आखरीन ख़वातीन की सरदार हैं। इसी हदीस में आगे बयान हुआ जो कि अभी हम बयान कर रहे हैं, उसी के आखिर में ये बयान हो रहा है कि नबी ने फरमाया कि आदम ने सर उठाकर देखा तो इन कलमात को साक़े अर्श पर पाया, और कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अली अल्लाह के महबूब हैं, हसन और हुसैन और फातमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह के बरगजीदा हैं। इसी तरतीब के साथ इन हजरते पंजतन के नाम आदम को सिखा दिए गए, और फरिश्ते जहाँ जहाँ नज़र करते तो उनको हजरते पंजतन के पाँच नाम ही नज़र आते। ये भी एक फजीलत है जो हजरते पंजतन को हासिल है, और हजरते जहरा इस फजीलत में शामिल हैं। तीसरा मौजू, हजरते जहरा सलामुल्लाह अलैहा अपने वालिद बुजुर्गवार, शौहर नामदार और दोनों साहबजादों के साथ एक और फजीलत में भी शरीक हैं, और वो फजीलत है हिदायत, इक्तिदा और तमस्सुक, यानी हिदायत पाने के लिए लोगों को उनके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत, और ज़रूरत के वक्त उनके वसीले से दुआ मांगी जाने की फजीलत है। जनाबे अनस के रिवायत करते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह ने नमाज सुबह हमारे साथ पढ़ी, जब नमाज से फरागत पाई तो हमारी तरफ रुक करके फरमाया, ऐ गिरोह मुस्लिमीन, जब तुम में से किसी के हाथ से सूरज चला जाए तो उसे चाहिए कि चांद से तमस्सुक रखे, और जब चांद भी छुप जाए तो जोहरा से वाबस्ता रहे, और जब जोहरा भी गुरूब हो जाए तो उसे चाहिए कि फ़र्क़दैन से वाबस्तगी रखे। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सूरज, चांद, जोहरा और फ़र्क़दैन से आपका क्या मतलब है? फरमाया, मैं सूरज हूँ, अली चांद हैं, फातिमा जोहरा हैं, और फ़र्क़दैन हसनैन अलैहिस्सलाम हैं। ये लोग खुदावंदे आलम की किताब के साथ मिलकर दो आलम बशरियत की दो दस्तावेज़ हैं, और ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मेरे साथ मुलहिक होंगे।